यही नाम है कि सब परमात्मा उसको प्राप्त हो जाए। श्रेष्ठ भाव के बीच में सब शब्द का प्रयोग किया जाता है कि इसका भाव बड़ा उत्तम है, और उत्तम कर्म के वहां भी सब शब्द को प्रयोग किया जाता है कि इसका कर्म सत्कर्म है, उत्तम है। इस प्रकार से अपना जो कर्म है वो भी सत्व है, और वाणी भी सत्व है, और भाव भी अपना सत्व है, तो बस बने सबकी प्राप्ति हो जाए। इसी प्रकार से निष्काम चीज है, अपने निष्काम की बातें तो सुनते हैं किन्तु वास्तव में जब तक निष्काम भाव नहीं होता तब तक उसका कल्याण नहीं होता। तो निष्काम जो भाव है वो बड़े ऊंचे दर्जे की चीज है, हरेक काम के वहां निष्काम भाव रखना चाहिए। दूसरे आदमी ने सुख पहुंचाना चाहिए और निष्काम भाव तक पहुंचाना चाहिए, वो बड़े ऊंचे दर्जे को भाव है। हरेक काम के जिसके वहां मनुष्य जब स्वार्थ को त्याग करके और निष्काम भाव से अनासक्त होकर के कर्मों का आचरण करता है तो उससे आत्मा शुद्ध होकर के मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे व्यवहार हम लोग सबके साथ के मां करना चाहिए, हरेक काम के बीच में इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जो निष्काम भाव है ये बड़े ऊंचे दर्जे की चीज है। कोई भी जगह में कथे भी किंचित मात्र भी कथा अपना कामना नहीं आनी चाहिए। आपने समझो कि मैं तो ऐसा बतनी बोलना चाहिए यातना करने का कि कोई प्रकार की से हम यातना करें, अपने द्वारा जो बड़े दूसरों का उपकार करें, सेवा करें, किंतु दूसरों से करवावे नहीं। और समझो कि दिन भर के बीच मनुष्य का कई दफा काम पड़ जाता है, तो हर एक काम में ये ख्याल करना चाहिए। कारण कि एक तो देन हो, एक लेन हो, तो देन तो काम में जा रहा है, लेन को नहीं। कोई भी भाई समझो कि अपने को कोई चीज दे रहे या कोई अपनी सेवा करे, तो किसी भी प्रकार को दूसरे को शत्रु जो है तो स्वीकार नहीं करे। किंतु जिस जगह के बीच में एक दूसरे उसकी आत्मा दुखी होती है, उस जगह उसको स्वीकार भी कर लिया जाए तो वो पाप को भागी नहीं होता। कोई आदमी जो है देखिए आत्मा ने दुख पहुंचते है, असंतोष होते है, तो मैंने संतोष कराने के वास्ते बातचीत स्वीकार कर ली है, तो एक प्रकार से मतलब अपने लिए कल्याणकारक हो गई। दूसरे की आत्मा के हित के लिए, उसके संतोष कराने के लिए न्यायुक्त कार्य अपन किए हो तो उससे अपनी आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है, उससे कोई अपना नुकसान नहीं हुआ। तो हरेक काम के बीच के वहां खाने पीने में एक प्रकार से आराम में भोग में हरेक काम के बीच के वहां अपने स्वार्थ के त्याग को भाव रखना चाहिए पदबद के ऊपर। तो केवल निष्काम भाव से की सारे गुण आकर के परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कैसा निष्काम भाव होना चाहिए कि जैसे प्रहलाद का था, उसका ऐसा निष्काम भाव था कि जिसमें कहीं सकाम भाव की गंध भी नहीं, सकाम भाव की गंध भी नहीं। भगवान खुद होकर वरदान के लिए कहते हैं तो प्रहलाद ये वरदान फिर में जो छिपी हुई कोई मांगने की इच्छा हो तो उसको आप नष्ट कर दो। कितना ऊंचा भाव है निष्काम। हर एक समय के बीच में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अपने आराम को छोड़कर दूसरा आराम पहुंचाओ, और वो पहुंचाओ निष्काम भाव से। दूसरा आराम पहुंचा करके उसमें कामना रह सकती है। क्या कामना रह सकती है कि भी मैं दूसरा को सुख पहुंचाऊं तो इसके फल स्वरूप मैंने स्वर्ग में ले लू, कामना सुख की कामना हुई, या संसार के वहां मेरी बड़ाई होगी, मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, तो भी सकाम भाव है। मान बढ़ाई की करके अन्य कोई बदले के मन स्वार्थ चाहे, ऐसा जो निष्काम भाव है वो कल्याण करने वाला है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण।
आनंदमय आनंदमय आनंदमय, ये जो तीन बात मैं आप लोगों को बताई, एक समता सम संभाव और एक निष्काम भाव यानी स्वार्थ को त्याग करके कर्म करना, उसको फल नहीं चाहे और निष्काम भाव से करे, और एक सत्यता वाणी भी सत्य और अपने व्यवहार भी सत्य और हृदय को भाव भी सत्य। तो ये तीन बात बताई। इसी प्रकार की बहुत दामी बात समझो कि बहुत है। देखो ये कैसे उच्च दर्जे की चीज है कि एक एक चीज कल्याण करने वाली, जहाँ तीनों में एक आ जाती है तो दूसरी अपने आप ही आ जाती है। ये सब मित्र है ना, एक साथ बढ़ने वाले। तो एक मित्र कहीं आया तो और ये जितने मित्र वहां चले जाते हैं, इनकी समय जरूर गए। कर्मयोग की इसके बिना सिद्धि नहीं होती और ज्ञान योग के साधन काल में भी समता, सिद्ध काल में भी समता आपको बताई। और इसी प्रकार से थी भक्ति के मार्ग के बीच के मध्य ये सब। तो समता जो है बहुत उत्कोटि की चीज है। धैर्य की समत्व योग उच्चते, समता को नाम ये तो योग है। इन सब के मध्य जैसे जी में समता है उसी को नाम योग है। जैसे समता की बात ऐसे ही प्रकार से समझो कि सतता की है, तो ऐसे ही स्वार्थ त्याग की बात। इसी प्रकार की चीज है कि संसार के पदार्थों में भोगों के बीच के मां जो आसक्ति है राग, इन सब के बीच के वहां संसार के पदार्थों में कर्मों में जब आसक्ति को त्याग हो जाए, सर्वता एकदम आसक्ति को त्याग हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति सहज हो जाए। यदा ही नेन्द्रिया से तो न कर्म सोन सज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योगा रुद्र सदोच्यते। भगवान ने ये बात गीता में बतलाई है। छत्तीस जाकर चौथा श्लोक है, इसका भाव यह है कि जिस काल के मां इंद्रियों के जो अर्थ है, इंद्रियों के भोग उनमें आश्रमी होता है, जो मनुष्य कर्म करता है तो उसमें आश्रमी होता है, आसक्त होगा, उसमें आसक्ति होगी तो कामना होगी, कर्मों के फल की इच्छा होगी, और न भी क्यों तो आसक्ति जो है तो भी हेतु है, फल में हेतु है। तो आसक्ति को एक प्रकार से त्याग कर, आसक्ति को त्याग होने से आप ही बहिराग हो जाए, तो बहिराग होने से कामना को त्याग आप ही जाए, परवाही नहीं रहे। तो केवल आसक्ति का त्याग से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तस्मात असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरण कर्म परमात्मा की पुरुष। इस वास्ते हे अर्जुन करने योग जो कार्य है उसको अनासक्त भाव से थी करना चाहिए। हर वक्त मन नित्य निरंतर आसक्ति से रहित होकर के और कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ऐसा तो यह चरण करना परमात्मा की पुरुष है। आसक्ति से रहित हुआ पुरुष आचरण करता हुआ परम जो परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है, उसको परमात्मा ही प्राप्त हो जाती है। जो अनासक्त भाव से कर्म करता है माने कोई भी काम करे, जब करे, दान दे, किसी भी उत्तम काम करे, प्रमोशन में कोई उसकी आसक्ति नहीं है, अपना कर्तव्य समझ करके करता है तो उसमें प्रसन्नता रहती है, शांति रहती है। क्योंकि जहाँ आसक्ति हो राग हो वहां द्वेष हो, जहाँ राग द्वेष हो उसके वहां समझो कि शांति में बिगड़ा है। पहले जो बात बतराई थी कि राग द्वेष के त्याग कर देने से क्षमता आ जाती है, अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति को त्याग होने से उसमें राग द्वेष को त्याग साथ ले जाए, हर शोक को त्याग साथ ले जाए। कि कामना जो है निष्काम जो कर्म मुक्ति का देना वाला, इसी बार प्रकार से अनाश्रित जो कर्म है वे भी मुक्ति का देने वाला है। कर्मों के बीच के आश्रित नहीं हुए, कर्मों में आसक्ति होगी तो कर्मों को त्याग नहीं होगा, आसक्ति नहीं है तो उसके कोई वहाँ करने से प्रयोजन नहीं है, कोई न करने से प्रयोजन नहीं है, ऐसी परिस्थिति हो जा रही। इसी प्रकार से और भी बहुत से उत्तम भाव हैं, जैसे शोक को जो अभाव है वो एक प्रकार से मैंने शांति कहते हैं कि जहाँ चित्त में चंचलता नहीं है, कोई प्रकार की संसारिक फुरना नहीं है, तो यह चीज भी मुक्ति का देने वाली है। उत्तम उत्तम जो गुणों का समूह है इनको अपने लेके बीच के वहाँ रखना चाहिए, इनके मुकाबले में रतन भी कोई चीज नहीं है। असली रतन तो यही है, और संसार के रतन तो नाम ही रतन है। और विक्षेप के अभाव को नाम ही शांति है, तो शांति है तो खुद ही मुक्ति स्वरूप है, तुर्थी लोग कल्याण हो जाए, क्षमता आने से अपना भी शांति से मिल जाए, और चित्त में बैराग होने से अपना भी शांति हो जाती।
नारायण 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 शिव नारायण 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 नारायण
जो अनाशित भाव से आप मनुष्य का कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार से थी परमात्मा सब ग्रह के मौजूद है, ये निश्चय रहने से उससे कोई पाप नहीं बनता। परमात्मा सब ग्रह है ये निश्चय होने से उसमें अपने गंभीरता धीरता दीरता ये सब आ जाते हैं, निर्भयता आ जाती है। जब सब जगह में परमात्मा को देखता है तो फिर वहां भय कौन चीज का, साक्षात परमात्मा जिस रूप है अपने हृदय से अनुभव करता रहता है, मन से देखता है कि परमात्मा सब जगह के वहां समान भाव से विराजमान हो रहे हैं, इस प्रकार से अनुभव करता रहता है, तो इससे उसका अंतक शुद्ध उसकी आत्मा का सुधार हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा उत्कोटि का भाव है। तो परमात्मा अवय है, स्वयं भय करके रहित है, भगवान निर्भय है और सब ज्ञान के बीच के माँ है। इस प्रकार से भगवान के स्वरूप को समझने से, धारणा करने से, विश्वास कर लेने से और उसमें निर्भय आ जाती है कि भगवान सब जगह के वहां मौजूद है तो मुझको कौन बात का भय है। तो ये निर्भय जो पद है, निर्भय जो भाव है, ये बड़े उच्च दर्जे की चीज है। तो मनुष्यों को सदा सर्वदा निर्भय होना चाहिए, और वही निर्भय जो पाप नहीं करता है, वही निर्भय जो आपने कानून नहीं तोड़ता, गवर्नमेंट की या ईश्वर की या किसी की भी कानून नहीं तोड़ता है, तो उसको कोई बात का भय नहीं है। जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको कोई भय नहीं है, वो निर्भय पद में स्थित हो जाता है। तो निर्भयता एक बहुत उच्च कोटि का गुण है। जितने जैसे अंतकरण की शुद्धि एक उच्च कोटि का गुण है, ऐसे निर्भयता है। तो हृदय के भीतर के बीच के मां जो अंतकरण की पवित्रता है, वो बड़ी उच्च दर्जे की चीज है। तो अंतकरण शुद्ध होने से ही शुद्ध की परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। हर शुद्ध सबसे शुद्धि और सबसे शुद्ध धर्मती हर की पवित्रता होने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। अंतकरण शुद्ध होने से समृद्धि में की परमात्मा के स्वरूप अटल हो जाती है। तो अंतकरण की शुद्धि से एक काम बन जाता, केवल अंतकरण की शुद्धि से अच्छी नीयत से अंतकरण जिसका शुद्ध होता है उसकी नीयत अच्छी होती है। इसी प्रकार से शास्त्रों के वहां बहुत से गुणों की बात लिखी, वो एक एक जो बात है कल्याण करने वाली है, पर एक के धर्म करने से दूसरी वहां अपने हाथ रह जाती। इस बात को समझ कर देते और इन गुणा को धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए, और ईश्वर की भक्ति करने से ये सब गुण अपने आप ही आ जाया करते हैं। केवल परमात्मा के ध्यान से भी तो हर वक्त भगवान ने याद रखना चाहिए। चलते उठते बैठते खाते पीते सोते भगवान के नाम को और भगवान के स्वरूप को याद रखना चाहिए। यह बात हर वक्त ताजा रहनी चाहिए। तो यह बात ताजा रहने से साधन तेज होकर आत्मा कल्याण हो जाता है। ध्यान करने से दुर्गुण और दुराचारों को सर्वथा नाश हो जाए है परमात्मा के ध्यान के प्रभाव से, और उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप ही आ जाते हैं भजन ध्यान के प्रभाव से। भजन ध्यान तो भगवान की भक्ति के प्रधान अंग है, तो इनके प्रभाव से ही सब काम अपने आप ही बन जाता है। तो इसलिए भगवान का जो नाम का जप है उसका नाम है भजन, तो भगवान के स्वरूप का जो चिंतन उसका नाम है ध्यान। तो भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का स्मरण चिंतन, ये दो चीज बहुत ही बढ़िया दामी चीज है मुक्ति मार्ग के लिए। परमात्मा की प्राप्ति में बहुत ही सारी चीज है, और भी जितने उत्तम उत्तम जो भाव है उनको धारण करना चाहिए, वो दुर्भाव है उनका त्याग करना चाहिए। जैसे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा है दुर्भाव है, तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को कुकर की विष्ठा के समान समझ करके इसकी अवहेलना कर देना चाहिए। इसी प्रकार से संसार के जितने जो विषय भोग हैं उनका एक प्रकार से स्वरूप से भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उनके संग से ही उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति के पैदा होने से फिर इसका पतन हो जाता है। तो शुरू से भी संसार के नीचे भगवान को त्याग कर देना चाहिए। वो परमात्मा के ध्यान में समझो कि परमात्मा का जो ध्यान करना चाहता है उस ध्यान में ये छह चीज सहायक है। छह चीज छह क्या ध्यान के बीच के मन जो है, एक तो ध्यान करने वाले को एकांत स्थान की आवश्यकता है, एकांत में बैठे इससे बहुत ही मदद मिलती है। और एक चित्त के मां बैराग होना चाहिए, बैराग स्थिति ध्यान के मां बहुत ही मदद मिले। और एक भगवान के नाम को जो जप है इससे बड़ी मदद मिले ध्यान के बीच के मां, और एक पुस्तक का वो जो स्वाध्याय है इससे भी बड़ी मदद मिले, और एक सत्पुरुषों का जो संग है इससे भी इसमें मदद मिलती है। तो एक तो एकांत बात संसार के पदार्थ से नीचे भगवान को स्वरूप से त्याग करके एकांत में जाकर के ध्यान लगा, दूसरे नीचे भगवान को त्याग माने एक प्रकार से बाहर के भी त्याग है भीतर से त्याग। तो बाहर से जो त्याग है वो तो उपरति है, भीतर से जो त्याग है वो वैराग है। तो उपरति वैराग तो और भगवान के नाम को साथ में जप हुए तो ध्यान से खुल गए और शुक्र से उठन करे तो ध्यान में मदद मिले और पुष्ट का और स्वाध्याय करे तो ध्यान में तो मदद मिले और ध्यान को जो अभ्यास है एक प्रकार से बार बार चित्त को लेकर भगवान के ध्यान में लगा रहे तो इससे भी बहुत लाभ मिले। इस प्रकार की कोशिश करने से थी वो आगे जाकर उस मैं अपने आप ही चित्त शुद्ध होकर के प्रसन्नता हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दिल में जो दया भाव है इससे आत्मा शुद्ध होकर के बहुत जल्दी कार्य की सिद्धि हुए तो हरेक प्राणियों के ऊपर दया रखनी चाहिए। दया भाव होने से ही दूसरे को उपकार बनती ना आवे और दया भाव से कि उदारता उत्पन्न हुए तो उदारता जो है दया भाव जो है इससे फिर वो परोपकार और वो परोपकार हो जिस काम भाव से तो पुरुष कल्याण हो जाए जिस काम की बड़ी महिमा है। ऐसे ही एक प्रकार से थी हिंदुओं में जो क्षमा को जो भाव है ये भी बड़े उच्च कोटि को भाव है। कोई आदमी अपना अपराध कर देना तो बदले लेना नहीं चाहते। इस प्रकार के करने से मेरे को दूसरा पर बहुत भारी प्रभाव पड़े। जिस मनुष्य में ये सब गुण आ जाते हैं उनका दूसरे बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये उत्तम गुणों का जो समूह है वो तो देवी संपदा है और उत्तम गुणों के समूह से थी हृदय में भक्ति की जागृति हो जाती है तो वो भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है। और जो भगवान की भक्ति करता है उसके भीतर के बीच के वहां ये उत्तम गुण अपने आप ही आ जाते हैं, भक्ति के प्रभाव से आप ही आ जाते हैं। जिनमें ये उत्तम गुण होते हैं वे ही भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे महात्मा मस्तु मांग पार्थ है देविंग प्रकृति मासिता भजंत नन मनसो ज्ञावा भूताधि मध्यम गीता की नोए ध्या 13 श्लोक में भगवान कहते हैं कि देवी संपदा वाले जो महात्मा हैं कुछ कोटि के जो पुरुष अनंत मन से मुझको नित्य निरंतर भरते हैं, मुझको अविनाशी भूतों का आदि जान कर करके थोड़ा नित्य निरंतर तो अपने मुझको भरते हैं। कौन देवी संपदा वाले तो इससे यह बात सिद्ध हुई कि जिनमें देवी संपदा के लक्षण होते हैं उत्तम गुण और उत्तम आचरण रहते हैं वे भगवान को भरते हैं। तो उत्तम गुण और उत्तम भाव को इस प्रकार से ये नतीज हो कि नित्य निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं कौन की देवी संपदा वाली महात्मा तो उत्तम गुणों से भगवान की भक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं और भगवान की भक्ति करने से उत्तम गुण उत्तम आचरण उसके हो जाते हैं। यह बात दिखलाई कि ताकि नुए जाके किस चीज लोग के बीच के मां पीछे सूत्राचार्य भजते माम भाग साधु समग्र तो कहते हैं कि अतिशय दुराचारी पुरुष भी यदि अनन भारत मुझको भजने वाला है मन मुझ में अनन भक्ति करने वाला है तो उसको साधु समझना चाहिए स्वस्थ समझना चाहिए क्योंकि वो अच्छी प्रकार से निश्चय वाला है। इसके प्रभाव से वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा है तो पापी किन्तु शीघ्र धर्मात्मा बन जाएगा। भक्ति के प्रभाव क्षिपुरंग होती धर्मात्मा सुखी कौन के प्रति जानी नैने भक्त प्रणति भगवान कहते हैं जाके किस किस लोग के केवल की वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को नित्य रहने वाली जो शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता ये तुम निश्चय जान। तो इससे यह बात सिद्ध हो गई कि भक्ति के प्रभाव से दुराचारी भी सदाचारी बन जाता है उसके दुर्गुण दुराचार को नष्ट हो जाते हैं और सदगुण सदाचार उनकी जागृति हो जाती है अपने आप ही। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि किसी भक्ति के करने से सदगुण और सदाचार अपने आप से आ जाते हैं और सदगुण और सदाचारों को धारण करने से आज उसके वहाँ स्त्री की भक्ति की जागृति हो जाती है। तो ये सब उत्तम उत्तम बातें हैं, उत्तम ये जो बातें बतलाई गई इनको अमृत के समान समझकर इनका पान करना चाहिए। जो सदगुण है, सदाचार है, ईश्वर की भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है और ये जितने जो गुण बतलाए ये एक प्रकार से बहुत दामी चीज है, तो इनको अमृत के समान समझ करके इनका सेवन करना चाहिए। और दुर्गुण दुराचार जो है, दुर्व्यसन जो है और आलस्य प्रमाद निद्रा इत्यादि के ये जो खराब चीजें हैं इनको विद के समान समझ के इनका समाज जवाब से त्याग कर देना चाहिए। इन उत्तम गुण और आचरणों के बीच के माँ जो प्रधान प्रधान जो बात बतलाई है उनको एक प्रकार से धारण करना चाहिए कि नियम के रूप से के आज से आगे में नियमित रूप से इनका हम धारण करते हैं, काम में लेने की कोशिश करेंगे।